अच्छा, उसके बाद जो है ना हमारे पास है आर्सेनिकल कैरेटोसिस। अभी तक के हमने जितने भी मैलिग्नेंसीज में ना SCC BCC पढ़ा है ना, और इवन के मेलानोमा में भी थोड़ा बहुत है, लेकिन SCC और BCC में ज़्यादा है कि इसमें जो है ना क्रॉनिक आर्सेनिक एक्सपोजर एक इम्पॉर्टेंट प्री डिस्पोजिंग फैक्टर या एक रिस्क कह लो फॉर दिस प्री मेलिग्नेंट कंडीशन एंड द मेलिग्नेंसी एज वेल। तो ये जो क्रॉनिक आर्सेनिक एक्सपोजर है ना, ये कहाँ से आता है? कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर से आता है। ताइवान, इंडिया, बांग्लादेश के अंदर जो है ना लोग वेल वाटर इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर आर्सेनिक एक्सपोजर होती है। उसके अलावा दूसरी तरह से भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन यही है। तो ये क्या करता है कि ब्लड स्ट्रीम से एब्जॉर्ब होता जाता है, और ये जो है ना काफ़ी स्किन कंडीशंस कॉज करता है, जैसे कि आर्सेनिक कैरेटोसिस है, जिसके फीचर्स पर अब हम डिस्कस करते हैं। उसके अलावा ये काफ़ी मेलिग्नेंसीज भी करता है, स्किन, लंग, लिवर, किडनी, इनमें और ब्लैडर में मेलिग्नेंसीज कॉज करता है। और स्किन में जो है ना ये BCC SCC कॉज करने से पहले या बोवन डिजीज़ कॉज करने से पहले क्या करता है कि ये ना आर्सेनिकल कैरेटोसिस करता है। ये पंक्टेट कैरेटोसिस होता है, बिल्कुल कॉर्न की तरह का ना, बिल्कुल स्पॉट स्पॉट की तरह, यानी पंक्टेट थिकनिंग करता है स्किन ऑफ द पाम्स एंड सोल्स में। अभी देखो ये BCC SCC से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि वहाँ पे सब जगह पे हमने कहा कि सन एक्सपोज एरियाज़ के अंदर होता है, लेकिन ये जो है ना पाम्स एंड सोल जो है वो सन एक्सपोज एरिया नहीं है, क्योंकि ये ब्लड स्ट्रीम से एब्जॉर्ब हो रहा है आर्सेनिक, और ये स्लोली स्लोली जाके पहले वहाँ पे क्या करता है कि थिकनिंग कॉज करता है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना इसके नंबर इंक्रीज़ होते जाते हैं, वो क्वालिस हो जाता है, और इवन के ये मतलब जनरलाइज थिकनिंग्स ऑफ द पाम एंड सोल भी कर सकते हैं। और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है ना, जितनी ज़्यादा इसके अंदर थिकनिंग होती जाएगी तो उसमें है ना हम ये सोच सकते हैं कि इसके अंदर मैलिग्नेंट पोटेंशियल है, तो ये मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो सकता है, और साथ साथ इंटरनल मैलिग्नेंसीज भी कॉज कर सकता है, जैसे कि SCC BCC स्किन में, और लिवर में, लंग में, ब्लैडर में, किडनीज़ में ये कैंसर्स कॉज करता है। तो इसमें जो है ना वही है कि एज के साथ इंक्रीज़ होता है, लेकिन जो है ना डोज़ की इसका डिपेंडेंट है कि जितना ज़्यादा क्रॉनिक एक्सपोजर होगा और जितने ज़्यादा डोज़ में होगा ना उतना इसका रिस्क बढ़ता जाएगा। मेल्स में उसी तरह ज़्यादा देखा गया है, और उसके अलावा इसमें जो है ना कैरेटोसिस के अलावा पिगमेंट्री चेंजेस भी होते हैं, जो कि मतलब इसको इस तरह समझ लो कि स्टेजेस हैं। शुरू शुरू में जो है ना वो पिगमेंट्री चेंजेस होते हैं, मेलानोसिस जिसको कहते हैं, और उसके बाद फिर ना साथ ही एसोसिएटेड हाइपो मेलानोसिस होती है, हाइपो पिगमेंटेशन, और थिकनिंग होती जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, नंबर इंक्रीज़ होता है, थिकनेस इंक्रीज़ होता है। अभी अगर इन्हीं लीजन्स के अंदर ना एरिडीमा हो, इंड्यूरेशन हो, इन्फ्लेमेशन नज़र आए, तो इसका मतलब ये कि अभी इसके अंदर मेलिग्नेंट चेंज आ रहा है। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स में इसके अंदर जो है ना न्यूट्रिशनल डेफिशेंसीज हैं, जस्ट विटामिन ACE, आयरन, फोलेट, थायमिन, राइबोफ्लेविन, रेटिनॉल, कैल्शियम। तो ये जो डेफिशिएंसीज होती है ना, ये क्या करता है कि आर्सेनिक के मेटाबॉलिज्म को और ज़्यादा डिक्रीज़ कर देता है। उसके अलावा अगर ये लिवर डिजीज़ हो और जो स्मोकिंग है ना, ये स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। अगर एक बंदे के अंदर ना आर्सेनिक एक्सपोजर है और वो साथ स्मोकर भी है ना, तो उसके अंदर 50 टाइम इंक्रीज रिस्क होता है ऑफ द लंग कैंसर, और ऑब्वियसली दूसरे कैंसर्स भी। UVR के साथ हम इसको लिंक नहीं कर सकते, हाँ अगर UVR एक्सपोजर ज़्यादा है तो वो जो है ना इसके दोनों सिनर्जिस्टिकली काम करते हैं, लेकिन देखो UVR एक्सपोज जो कैंसर्स होते हैं ना वो ज़्यादा सन एक्सपोज एरियाज पे देखे गए हैं, जबकि जो आर्सेनिक है वो तो पाम्स एंड सोल्स पे, ये सन प्रोटेक्टेड एरिया है, तो उसको इतना क्लोजली हम लिंक नहीं कर सकते। पैथोजेनेसिस में सिंपल ये है कि आर्सेनिक जो है ना वो क्या करता है कि डीन रिपेयर मैकेनिज्म को इम्पेयर करता है, और इसकी वजह से मैलिग्नेंसी कॉज करता है। पैथोलॉजी में इसकी कोई ख़ास माइक्रोस्कोपिक चेंजेस नहीं है, लेकिन ये कि जैसे हाइपरकेराटोसिस होता है ना, वही होता है कि इसमें हाइपरकेराटोसिस होती है, और उसके अलावा जो है ना सेलुलर डिस्प्लेसिया में मिल सकता है, माइल्ड टू मॉडरेट एटाइपिया भी मिल सकता है, और बोवन डिजीज़ वाले फीचर्स भी मिल सकते हैं। फिर उसके बाद जो इसकी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटेशन तकरीबन मैंने सारी डिस्कस कर ली है। हाँ, इसमें बस ये याद रखना है कि अगर जो है ना अल्सरेशन हो रही है, ड्यूरेशन इन्फ्लेमेशन, तो ये शो करता है कि इसमें मैलिग्नेंट चेंज आ रहा है। पाम्स एंड सोल्स की मेन इन्वॉल्वमेंट होती है, जबकि बैक ऑफ द फिंगर्स, बैक ऑफ द हैंड और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द लिम्स और ट्रंक को भी इन्वॉल्व ये कर सकता है। फिर उसके बाद डीडीज़ में हमने इसकी जो है ना डिसेमिनेटेड पंक्टेट केराटोडर्मा याद रखना है। डेरियर और लाइकन प्लैनस पता नहीं क्यों उसके अंदर डाले, मुझे नहीं समझ में आया। और प्लांटर वॉट्स पाम्स और मतलब सोल्स ऑफ द फीट पे अगर जो है ना इस तरह के लीजन्स आए तो हम वॉट भी सोच सकते हैं, लेकिन वॉट ज़्यादा पेपिलोमेटस टाइप ओवर ग्रोथ ज़्यादा होता है। कॉम्प्लिकेशंस और कोमॉर्बिडिटीज़ में सबसे पहले तो हमने कैंसर याद रखना है, और दूसरा इसके अलावा ना कैंसर कॉज करने के अलावा भी ये जो है ना GI नर्वस टिश्यू मसल हार्ट लंग्स लिवर किडनीज में एक्यूमुलेट ऐसे भी हो सकते हैं, तो फिर उनको डिसफंक्शन कॉज करेगा। डिजीज़ कोर्स एंड प्रोग्नोसिस में जब ये पंक्टेट लीजन्स प्रेजेंट होते हैं पाम सोल्स में विद पैसेज ऑफ टाइम ये बढ़ते जाते हैं और कन्फ्लुएंट हो जाते हैं और जनरलाइज केराटोडर्मा पामो प्लांटर कर्स कर सकता है और BCC SCC वोन डिजीज़ कॉज कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है ना हमने कोई भी इंडेमिक एरिया जिसमें हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इसमें आर्सेनिक कंटेमिनेशन हो सकती है तो जो भी इनका वाटर वगैरह है उसको टेस्ट करेंगे। उसके अलावा जो भी इंडिविजुअल में हम सस्पेक्ट करें उसके ब्लड सैंपल्स और यूरिन सैंपल्स को टेस्ट कर सकते हैं फॉर द आर्सेनिक लेवल्स। और इसके अलावा हम इसमें ना हेयर और नेल में भी सैम्पलिंग कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी एक्यूमुलेट होता है। और फाइनली अपनी कंफर्म करने के लिए डायग्नोसिस को हम स्किन बायोप्सी कर सकते हैं। मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले तो हमने पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स करने हैं लोगों को अवेयर करने के लिए, और जो है ना हमने इसमें पेशेंट्स को ये बताना है कि आपने अपनी डाइट अच्छी रखनी है, दे आर डूइंग स्मोकिंग तो क्विट कर दे स्मोकिंग और अपनी बैलेंस डाइट रखें। और पीरियोडिकली पेशेंट को एग्जामिनेशन के लिए हमने बुलाना होता है कि हम ये देखें कि इसके अंदर कोई मैलिग्नेंट चेंज तो नहीं आ रहा। फिर फर्स्ट लाइन में अगर जो है ना लीजन्स जो है वो लेस इन नंबर हैं और सिर्फ लिमिटेड हैं तो उसमें हम सर्जिकल रिमूवल क्रायो और क्यूरेटाज और कॉटरी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मल्टीपल लीजन्स हैं तो उसमें हम ओरल रेटिनॉइड्स भी साथ में दे सकते हैं। और अगर ज़रूरत पड़ी बहुत ज़्यादा हाइपर केराटोटिक लीजन तो उसमें हम केराटोलिटिक एजेंट्स लाइक सैलिसिलिक एसिड भी दे सकते हैं। ये फर्स्ट लाइन है। सेकेंड लाइन में हम 5% ये इमिकुमॉड क्रीम दे सकते हैं। वंस डेली अगर हम देंगे तो 6 वीक्स के लिए देंगे, लेकिन अगर वंस डेली 3 to 5 times a week दे रहे हैं मतलब कि पूरे सारे डेज ऑफ द वीक पे नहीं दे रहे तो फिर हम 8 वीक्स के लिए देंगे। तो ये क्या करेगा कि आर्सेनिकल केराटोसिस को भी डिक्रीज़ करेगा और बोवन डिजीज़ और BCC के रिस्क को भी डिक्रीज़ करेगा।